Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तब विरोचन क्या करता है? इंद्रियों से दिखाई पड़े. हर व्यक्ति यही कहते हैं. तो इंद्रियों से क्या दिखाई पड़ता है? तो यही स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है सर्वत्र. सभी को या तो जड़ पदार्थ, संसार के पदार्थ दिखेंगे, और या फिर ये शरीर दिखेगा. तो वे लोग पत्थर को तो भले ही भगवान न माने, शरीर को भगवान मान लेते हैं, क्योंकि उनको ये भ्रांति है. क्योंकि जो चलने फिरने वाला, बोलने वाला है, देखने सुनने वाला है, वही आत्मा हो सकता है. और वे लोग ये मानते हैं कि ये सब काम करने वाला शरीर है, पत्थर नहीं है, इसलिए शरीर ही आत्मा है. सबसे पहले इस चार वाक देहात्मवादी चार वाक्यों का पक्ष को यहां रखा है. लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सब क्रमश से सबका खंडन करने के बाद कहा भ्रांता वृषमवादिना, ये सब भ्रांत हैं. किसके द्वारा भ्रांत हैं? माया शक्ति विलास कल्पित महाभ्रांत हैं ये. तो उस माया के जो शक्ति विलास शक्ति है, उसके द्वारा ये भ्रांत हुए होने के कारण व्यामोह हुए हैं, व्यामोह को प्राप्त हुए हैं. भ्रांत ही इसलिए व्यामोह को प्राप्त हुए हैं, इसलिए शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं. इसको कहते हैं संसार का अध्यास. जैसे लोहे के गोले को आग कह देता है कोई, तो लोहे का गोला लोहा ही होगा, आग तो हो नहीं सकता है. अग्नि अलग चीज है, लोहा अलग चीज है, लेकिन अग्नि के संसर्ग से उसमें उष्णता आ जाने मात्र से लोग कहते हैं कि अग्नि का गोला है. गोला ये गोल ये आकार अग्नि की नहीं हो सकती, अग्नि निराकार है. फिर भी लोहे का जो आकार है, उस आकार में अग्नि का संचार होने के कारण भ्रांत होकर लोग कह देते हैं कि अग्नि का गोला है. और लोग कह देते हैं कि ये लोहे का गोला लाल है, जबकि लोहा लाल नहीं हो सकता है. लाल ये अग्नि का धर्म है. अग्नि के लालपना को लोहे के गोले में आरोप करके लोहे का गोला लाल है कह देते हैं. अग्नि की उष्णता को लोहे के गोले में आरोप करके लोहे का गोला गर्म है कह देते हैं. और लोहे के गोले के गोलापना आकार को अग्नि में आरोप करके अग्नि का गोला कह देते हैं. अग्नि गोल नहीं हो सकता, लोहा गर्म नहीं हो सकता. अग्नि गोल नहीं हो सकता, लोहा लाल नहीं हो सकता. फिर भी भ्रांति, इसको कहते हैं संसर्ग अध्यास, अन्योन्य अध्यास. एक का धर्म दूसरे में और दूसरे का धर्म दूसरे में आरोप करके और दूसरे को दूसरे रूप में मान लेना, इसी को अध्यास है. चैतन्य की छाया, जिस छाया से युक्त हुआ हुआ, चैतन्य की तो बात ही छोड़ दो, चैतन्य की छाया का स्पर्श हुआ है. और छाया भी शरीर में नहीं पड़ सकता है, ये ध्यान देना. कूटस्थ का प्रतिबिंब अन्नमय कोश में नहीं पड़ता है. जैसे आपकी आपका प्रतिबिंब दीवारों में नहीं पड़ सकता है, इसी तरह कूटस्थ का परमात्मा का प्रतिबिंब छाया देह में नहीं पड़ सकता है. जैसे आपके शरीर का प्रतिबिंब दर्पण में ही पड़ सकता है, इसी तरह परमात्मा के प्रतिबिंब तो सूक्ष्म शरीर अंतःकरण में पड़ सकता है, स्थूल शरीर में नहीं पड़ता है. लेकिन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नजदीक होने के कारण स्थूल में पड़ा हुआ परमात्मा की चित छाया को अंतकरण के संपर्क से स्थूल शरीर में भ्रांति से दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। वेदांत का रहस्य है, शरीर को चैतन्य मानने का और कोई कारण नहीं है, शरीर को चैतन्य मानने का और कोई कारण नहीं, एक ही कारण है। शरीर चैतन्य होकर चैतन्य माना गया नहीं है, शरीर मूल रूप में जड़ है और चैतन्य की छाया पड़ा हुआ है अंतकरण। वो अंतकरण के नजदीक स्पर्श में आने होने के कारण छाया का स्पर्श प्राप्त हुआ है। किसको? चित छाया का स्पर्श प्राप्त हुआ शरीर को, तो भ्रांति से शरीर चैतन्य जैसा लगने लगा है, और जो वस्तु जैसा लगता है वो वस्तु वैसा होता नहीं है। तत्व तो यह है, इसलिए भ्रांति कहते हैं। देहम, तो कुछ लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, और चार्वाक इसलिए है कि सब लोगों को यही अच्छा लगता है। शरीर को आत्मा मानकर यदि कोई कह दिया जाए, उपदेश किया जाए, तो सबको यही अच्छा लगता है। शरीर को आत्मा मानने वाले के उसकी प्रशंसा करने लगे, तुम तो बड़े गोरे हो, क्या नाक फूल जाता है उसका, तुम तो बड़े सुंदर देख रहे हो, आज क्या बात है, तुम तो इतने सुंदर देख रहे हो, और क्या प्रसन्न होता है वो। और कोई कह दे कि अरे तुम तो आज तो बहुत बेकार के लग रहे हो, चेहरा भी काला नजर आ रहा है, तुम बड़े क्या बात है इत्यादि, जब उसको कह दिया जाता है तो बड़ा दुखी होता है। तो देह को आत्मा मानने वाले, देहम, देह ही आत्मा, इसी की सेवा करो, ये ठीक तो सब कुछ ठीक, ये खुश तो सब ठीक। लेव जी, तो सुबह से उठकर शाम तक इसी की पूजा होती है। शंकराचार्य जी ने एक जगह विवेक चूड़ामणि में लिखा है, सवाकारम यावत भजति मनुजस्तावद सुचि। मनुष्य सुबह से शाम तक किसका भजन करता है, किसका पूजन करता है? सवाकार, सबकी पूजा करता है। सुबह उठा कि सबसे पहले है क्या करता है? पूजा में तो ये षोडशोपचार होते हैं ना, पादयो पाद्यम समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि, यही ना है, मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि। पंडित जी ने कहा मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि, मध्य पान समर्पयामि, अर्थ कर दिया बीच बीच में जल भी चढ़ाते जाओ, मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि, और उसका संयुक्त शब्द जोड़ कर क्या किया, मध्यपानम समर्पयामि, मध्यपान समर्पण करो। किसको? सब जी को, सब पूजा में यही तो होता है। पहले उठते ही पय समर्पयामि, पय प्रतिभ्याम पयोगदी को, अब आजकल तो पय तो है ही नहीं है, तो क्या है, तो पहले चायम समर्पयामि। तो हमने कहा चाय क्यों पीते हो तुम लोग, बोले चारे भाई ये चाय भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है, चाय के रूप में मैं सभी के हृदय में विद्यमान हूं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य हृदि चाहम सन्निविष्ट, सभी के हृदय में चाय के रूप में मैं विराजमान हूं। गीता बिल्कुल सार्थक है आज के युग में, है? भगवान और के रूप में हृदय में रहे न रहे, चाय के रूप में तो सबके हृदय में है, इसीलिए सभी लोग कहते, शंकराचार्य जी ये कहते थे, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद आत्मतत्त्वम्, प्रातः काल उठते ही मैं उस हृदय में अवस्थित उस आत्मतत्व का मैं स्मरण करता हूं, और हम भी वही करते हैं, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद चाय तत्त्वम्, उठते ही पहले हृदय में स्फुरित होने वाला उच्चार का ही स्मरण करते हैं। तो ये सब क्या है? तो सवाकारम यावत भजति, सभी लोग सब पूजा करते हैं। और ये नियम है, वो जिसकी तुम निष्ठा से पूजा करोगे वो एक दिन न एक दिन प्रसन्न होगा, प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होने पर वही चीज देगा जो उसके पास देने की क्षमता होगी। जो भी प्रसन्न होगा तो वही चीज देगा जो उसके पास देने की क्षमता होगी। और देने की क्षमता यदि उसके पास नहीं होगी तो वो नहीं देगा, चाहे कितने प्रसन्न हो जावे। भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, वह उस भक्त को वो जो चाहता है वो दे देंगे, क्योंकि उनके पास देने की क्षमता है। वो यदि संसार वैभव और भोग चाहता है तो वो भी तथास्तु कह देंगे, देने की क्षमता है, दे देंगे वो। और वह भोग नहीं चाहता है तो निवृत्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो वो भी तथास्तु दे देंगे। भोग मोक्ष दोनों ही दे सकते हैं भगवान शिव, क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। और ये जो सब है, तुम जीवन भर इनकी साधना करो, सेवा करो, ये अंत में प्रसन्न होगा तो क्या देगा वो? तो वही देगा जो इसके पास है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजत सुमाम। ये तो क्योंकि ये सबके रूप में ही परिणत होना है, अभी भी सब है। सवाकारम यावत, क्योंकि मरे हुए मुर्दे के आकार में और इस आकार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरने के बाद कोई कोई कहते हैं नाक टेढ़ी होती है, आप लोगों ने अनुभव किया है कि नहीं कोई पता नहीं, यहां तक कह देते हैं कि नाक टेढ़ी हो जाए तो मरने का लक्षण है, ये भी कहते हैं। मरने से पहले ही यदि नाक टेढ़ी हो गई तो समझ लो ये मरने का लक्षण है। एक और मरने से पहले ही नाक टेढ़ी होगी तो मरने के बाद कहीं सीधी होगी नाक? तो कोई कहते हैं कि मरने के बाद और जिंदे में ये फर्क है कि जब तक जिंदा है नाक सीधी रहती है, जब मर जाता है तो नाक टेढ़ी होती है। पता नहीं, आप लोग तो श्मशान क्रिया किया होगा कई बार, और अपने तो सन्यासी हुए इसलिए किसी को श्मशान में ले जाना नहीं है। हाँ, ले तो जाते हैं, नीलधारा विसर्जन कर देते हैं, लेकिन नाक पर कभी ध्यान नहीं दिया है हमने। अब की बार ध्यान देंगे, हो कई ऐसी मौसम, आप भी ध्यान देना, आपके जीवन में तो आता ही रहता है ना। कोई आकार प्रकार में न कान बदल जाता है न नाक बदल जाता है, सवाकारम जैसा आकार है वैसे आकार। तो सवाकारम यावत भजति मनुज तावत असुचि, जब तक देह की उपासना करता रहेगा वह शुद्ध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि देह कभी भी शुद्ध ही नहीं है, अशुद्ध है। इसीलिए तो अविद्या के लक्षण करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं असुचिषु अनात्मेषु आत्मख्याति, अपवित्र में पवित्रता की ख्याति, अनात्मा में आत्मा की ख्याति, अनित्य में नित्यत्व की ख्याति, यही अविद्या है। तो असुचि अपवित्र देह में पवित्र आत्मभाव, यही अविद्या का लक्षण है, और इसी की उपासना करते हैं तो ये अंत में क्या देता है? बहुत प्रसन्न हो गया तो ये सब बना देगा, मुर्दा बना देगा, क्योंकि सवाकार हम यावत भजति मनुजस्तावत असुचि। परेभ्य स्यात् क्लेश जनन मरण व्याधि निलयम, जन्म और मृत्यु इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण शरीर जितना भी प्रसन्न होगा तुम्हें मृत्यु ही देगा, और ये शरीर चाहे जितने ही प्रसन्न होगा तुम्हें जन्म देगा, क्योंकि इसके पास यही दो धर्म है, जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है, भूख प्यास प्राण के धर्म है, सुख दुख मन के धर्म है। जो जिसके पास जो धर्म है वही धर्म से युक्त होगा और वही भाव प्रकट करेगा। तो चार्वाक ये शरीर को आत्मा मानते हुए सभी को ये कहते हुए फिरते हैं, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तब ये लोग क्या कहते हैं, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, उनको विश्वास है शरीर तो फिर भी आएगा, पता नहीं ये दूसरे का अन्न दोबारे मिले चाहे न मिले, ये तो मौका है। ये चार्वाक सिद्धांत है। देहम, कुछ लोग चार्वाक का ही कुछ सुधारवादी हैं, वे हैं चार्वाक, उस सुधारवादी चार्वाक है। शरीर को आत्मा, शरीर को चैतन्य, शरीर को परम तत्व मानना न चाहने वाले जो विचारक हैं, वो कहते हैं कि नहीं, शरीर आत्मा नहीं हो सकता है, प्राण आत्मा हो सकता है, क्योंकि जीवन भी तब तक सार्थक है जब तक प्राण है, प्राण रहते हुए ही सब कुछ है, शरीर प्राण के रहित शरीर रहते हुए भी वह चल नहीं सकता है, और प्राण का संचार हो जाए तो चलने लगता है, तो शरीर की अपेक्षा प्राण ही ज्यादा चैतन्य है, इसलिए प्राण ही आत्मा है, ऐसा मानने वाले दूसरा पक्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राण आत्मा नहीं है, क्योंकि प्राण जड़ है, गहरी निद्रा के अवस्था में जब पहुंचते हैं व्यक्ति तो प्राण संचार करता हुआ भी कुछ भी ज्ञान नहीं होता, और सारे ज्ञान का एक ही साधन इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा हो सकती हैं, इसलिए इंद्रिय आत्मावादी बहुत लोगों को यह भ्रांति है, इन्हें इंद्रिय ही आत्मा है, और लोग भी कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैं कह रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, इसमें नमक है, नमक ज्यादा है, नमक कम है, किसको पता चला, मुझे पता चला। आप लोग सब ये व्यवहार करते हो कि नहीं, तो ये सारे के सारे चीज इंद्रियों को लेकर है, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है मानने वाले बहुत हैं। देहम प्राणमपि इंद्रियान्यपि चलाम, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंद्रियां आत्मा नहीं हो सकती, जागृत में ही इंद्रियां अपने अपने गोलक में रहकर विषय को ग्रहण करती हैं, लेकिन जब सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, स्वप्न अवस्था में इंद्रियां तो लीन हो जाती हैं, फिर मन ही सब कुछ करता है, इसलिए कहते हैं कि मैं आज बहुत सुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, हर व्यक्ति मन को मैं कहता हुआ व्याख्या करता है, क्योंकि सुख दुख मन का धर्म है, और उसी मन को मैं मान रहा है, इसका मतलब मन ही आत्मा है, आज मेरी आत्मा ठीक नहीं है, और तुम्हारी आत्मा क्या ठीक नहीं होगी, मन ठीक नहीं है, लेकिन कह देते हैं कि मन को ही आत्मा मानकर मेरी आत्मा ठीक नहीं है, आज उसने ऐसा कहा कि बस मेरा, मैं बहुत दुखी हूं, और तुम क्या दुखी हो, मन दुखी है, तुम तो उस दुख के साक्षी हो, लेकिन इस बात को न जानने वाले व्यक्ति मन को ही मैं कह देता है। उसी को चलाम, अति चलायमान जो मन है यही आत्मा है, बुद्धिम च शून्यम विदुः, चलाम का अन्वय बुद्धि के साथ भी कर लेना, सुरेश्वराचार्य जी ने ये अन्वय किया है, मन भी चलायमान है, बुद्धि भी चलायमान है, क्योंकि क्षण क्षण में अलग अलग वृत्ति बन जाना यही उसकी चलायमानता है, यही उसका विचलन है। आप अनुभव करते हैं कि आपका मन एक रूप में रहता है सुबह से शाम तक, इसी का नाम चलायमान है, चलम, और बुद्धि भी चल है, क्योंकि हर क्षण में अलग अलग वृत्ति बनती है, घट देखा तो घटाकार बन गया, तो पट देखा पटाकार बन गया, मठ देखा तो मठाकार बन गया, जो दृश्य सामने आया तत्त्व दृश्य अनुरूप वह वृत्ति के रूप में परिणत हो जाना, इसी को चलायमान कहा है, इसको क्षणिक विज्ञान मान कहते हैं। ये बुद्ध का ही एक पक्ष है, क्षणिक विज्ञान वा क्षणिक विज्ञानात्म। देहं प्राणम् अपि इन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः। और बुद्ध का ही एक और पक्ष है, बुद्ध में चार हैं, चार पक्ष हैं बुद्ध का, समयाचार, मध्यंदिन, मध्यमा, श्रोत्रांतरिक, वैभाषिक, ये बुद्ध के ही भेद हैं। ये लोग कोई क्षणिक विज्ञानवाद मानते हैं, कोई आत्मख्याति मानते हैं, कोई अनात्मख्याति मानते हैं, और एक बुद्ध का ही एक पक्ष है कि शून्य आत्मवाद, सारे के सारे जगत का मूल कारण शून्य है, अभाव है, अभाव से भाव की उत्पत्ति, शून्य से जगत की उत्पत्ति, असत से जगत की उत्पत्ति, पहले नहीं था वो नहीं था इससे जगत की उत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं शून्यवादी। सुसुप्ति अवस्था में शून्यवाद का अनुभव होता है, न किंचित अवेदिशम, कुछ भी भान न होना, यही मूल उसका शून्यात्मवाद का उदाहरण है। सुसुप्ति अवस्था में इसका अनुभव होता है। देहं प्राणम् अपि इन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः। इस प्रकार के भ्रांत समाज में कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, और शंकराचार्य जी किस आशय से कह रहे हैं, इसको राजनीतिक नहीं बना लेना, बात समझ रहे हैं ना, मैं आप लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं, शंकराचार्य जी जिधर संकेत कर रहे हैं। स्त्री बालांध जड़ोपमास्त्वहमिति भ्रांता वृषम वादिनः। ये लोक व्यवहार में भी दिख रहा है वो, इसलिए अन्यथा नहीं लेना। शरीर के श्रृंगार में शरीर आत्मवाद का भाव पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में ज्यादा दिखता है। लौकिक व्यवहार में आप बूढ़े हो गए इसलिए आपको ऐसा ना लग रहा हो, नहीं तो महिलाएं ऐसे हैं कि उनके हर मणिबैग में एक छोटा सा मिरर होगा ही होगा। वो मिरर का क्या होता औचित्य भाई है, उसमें मिरर का क्या मतलब है? ऐसी कोई औरत नहीं मिलेंगे जो एक छोटा सा मिरर अपने साथ में लेकर न चलती हो, लेकिन ऐसे बहुत से पुरुष हैं जो कभी भी जेब में मिरर लेकर नहीं चलते। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? मिरर किसको दिखा रहा है, है? आत्मा को दिखाता है मिरर। वो क्या आत्मदर्शन करने के लिए मिरर लेके चलते हैं? और कोई महिला हो और उसके कमरे में खाने पीने का सब कुछ दे दो, पहनने का भी बढ़िया दे दो, लेकिन उसको कह देना कि तुम कभी भी दर्पण नहीं देखना, मिरर नहीं देखना, तो उसके लिए इतना बड़ी सजा हो जाएगी, उसको तिहाड़ जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसको भले खाने पीने का कुछ साधन न दो, भले खिचड़ी दे दो, आम के फजी तो दे दो, पहनने का खूब ज्वेलरी दे दो, अलग अलग आइटम, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग आकृति के मैचिंग, देख लो, बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी, सब कुछ उसके कमरे में रख दो, और फुल साइज का मिरर रख दो, वो भी दो दो तीन तीन है, लेफ्ट साइड में भी एक मिरर, फ्रंट में एक मिरर, राइट साइड में और दूसरा मिरर, क्या आनंद है। खाने के लिए तुमको बस फजी तो और खिचड़ी मिलेगा तो राजी हो जाएगी। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? ये लौकिक, ये अनुभव में आ रहा है, उसको लेकर शंकराचार्य ने यह किया है। ये कहना उनका आशय नहीं है कि स्त्री समझदार नहीं होती, ये कहने का आशय नहीं है। देह के प्रति ज्यादा लगाव होने के कारण ही यहां शंकराचार्य जी ने उनका स्मरण किया हो, हाँ, इसको अन्यथा राजनीति नहीं कर लेना। हाँ, तो शंकराचार्य ने स्त्री की निंदा क्यों की करके कल फिर झंडा लेकर खड़े नहीं हो जाना। स्त्री बालांध जड़ो, जैसे बालक बच्चे हैं वो बात समझते नहीं है और छोटे छोटे बात पर ही विवाद करते हैं और कागज के नोट बनाकर खरीदारी करते हैं, पत्थर के बीवी बनाकर शादी करते हैं, पत्थर के बच्चे बनाकर दोनों को दूध पिलाते हैं, गोद में लेते हैं। गुड़िया से खेलने वाले कौन है बोलो? गुड्डा गुड़िया से खेलने वाले कौन? बच्चे। समझते नहीं है वो। इस अर्थ में स्त्री बालांध जड़, अंधा व्यक्ति, जड़ व्यक्ति, ये लोग क्या कहते हैं? इन्हीं सब में अहम अहम करते हैं। जैसे स्त्री शरीर में अहम करती है तभी उसको याद्यास होता है, तभी हर समय में फुर्सत हुई, फुर्सत भी न हो तो भी हाँ उबारो उबारो हूं आऊं सुभाष, फिर अंदर जाएगी, फिर दर्पण के आगे खड़ी होगी, पति बाहर बुलाता रहेगा, मोड़ो थी गये, उबारो उबारो हूं आऊं छू बस, फिर दर्पण के आगे खड़ी होगी। आप कहोगे कि आपको कैसे पता चला ये है? तो समय 35 हो गया, फिर लेट होगा भाई, इसकी पूरी व्याख्या कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।